तो आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने शायद सदियों से मानवता को उलझा कर रखा है।
बिल्कुल, ये सच में एक बहुत ही भारी मुद्दा है।
हाँ, और वो विषय है पीड़ा, दुख और ईश्वर का स्वभाव। यानी जब बुरा वक्त आता है तो हमारा नजरिया क्या होना चाहिए।
सही कहा। और आज हमारे पास इस पर चर्चा करने के लिए जो स्रोत हैं वो जॉन वॉल्टन के नोट्स और उनके विचार हैं।
राइट, उन्होंने जोब की पुस्तक यानी बुक ऑफ जोब के आधार पर पीड़ा के धर्मशास्त्र का विश्लेषण किया है।
असल में उनका काम इस विषय पर काफी गहरा है,
है ना? लेकिन देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ।
कौन सी बात?
आज का हमारा मिशन ये खोजना बिल्कुल नहीं है कि दुनिया में दुख आखिर है क्यों, या जब हम मुश्किल में हों तो हमें रोना चाहिए या नहीं।
हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी होती है ऐसे विषयों को लेकर।
बिल्कुल, बल्कि आज का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि जब हम किसी गहरी पीड़ा से गुजर रहे हों तो उस स्थिति में ईश्वर के बारे में सोचने का सही तरीका क्या होना चाहिए।
ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, यानी क्यों से हटकर कैसे पर आना।
सही पकड़ा आपने। इसको समझने के लिए ना मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक बिल्कुल सुनसान और अंधेरी सड़क पर गाड़ी चला रहा है।
अच्छा।
और अचानक गाड़ी का इंजन पूरी तरह से बंद हो जाता है और बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है।
ओ, ये तो बहुत ही खराब स्थिति है,
है ना? अब वो व्यक्ति घबराहट में डैशबोर्ड से गाड़ी का मैनुअल निकालता है। उसको लगता है कि शायद इस किताब में लिखा होगा कि इंजन के किस तार को जोड़ने से गाड़ी वापस चालू हो जाएगी।
पर हम जानते हैं कि ओनर्स मैनुअल में इंजन ठीक करने का तरीका नहीं होता।
एग्जैक्टली, जब वो पन्ने पलटता है तो उसे मैकेनिक बनने का कोई तरीका नहीं मिलता। उस मैनुअल में तो बस ये लिखा होता है कि जब गाड़ी खराब हो जाए और आप कुछ भी ठीक ना कर सकें,
हाँ,
तो उस वक्त पैसेंजर सीट पर बैठे हुए ड्राइवर के साथ कैसे बात करनी है, यानी उस बेबस स्थिति में इंसान की मानसिकता कैसी होनी चाहिए। वॉल्टन के मुताबिक जॉब की पुस्तक भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है।
वाह, ये एक बहुत ही सटीक और गहरा उदाहरण है। सच कहूं तो इस पूरे स्रोत में जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो यही है।
कौन सी बात?
यही कि ये किताब हमें हमारी सोच के उस पुराने ढांचे से बाहर निकालती है जहां हम ईश्वर को अपने बनाए हुए मापदंडों पर परखते हैं।
हमारी फितरत होती है हर चीज को जज करने की।
बिल्कुल, इंसान की फितरत होती है कि वो हर चीज को न्याय के एक तराजू पर तौलना चाहता है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को हमारी उम्मीदों पर खरा उतरना ही चाहिए,
या फिर हमारे सही और गलत के पैमानों पर।
सही कहा। लेकिन वॉल्टन के नोट्स हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर किसी भी बाहरी मापदंड या क्राइटेरिया के प्रति जवाबदेह नहीं है।
मतलब हम उससे फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमारे हिसाब से काम करे।
बिल्कुल नहीं। जब भी हम आसमान की तरफ देखकर ये पूछना शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम अनजाने में ही खुद को जज की कुर्सी पर बिठा लेते हैं
और ईश्वर को कटघरे में खड़ा कर देते हैं।
एग्जैक्टली। वॉल्टन बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि पीड़ा का कोई भी सच्चा धर्मशास्त्र ईश्वर पर मुकदमा चलाने से शुरू नहीं हो सकता।
ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि ये सुनने में थोड़ा आसान लगता है लेकिन असल जिंदगी में इसे अपनाना बहुत मुश्किल है।
हाँ, ये मैं मानता हूँ।
इससे पहले कि हम इस बात पर जाएं कि पीड़ा को किस नजरिए से देखना चाहिए, मुझे लगता है ये समझना जरूरी है कि हम किस तरह की पीड़ा की बात कर रहे हैं।
सही बात है, पीड़ा के बहुत से अलग अलग स्तर होते हैं।
बिल्कुल, दुनिया सिर्फ एक तरह के दुख से नहीं बनी है। वॉल्टन अपने नोट्स में पीड़ा के कई स्तरों का जिक्र करते हैं, जैसे सबसे आम है शारीरिक पीड़ा,
बीमारी या कोई दुर्घटना।
हाँ, फिर मनोवैज्ञानिक पीड़ा आती है, जैसे किसी अपने को खोने का शोक या बहुत गहरी चिंता। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा झकझोड़ती है वो है जिसे वॉल्टन प्रतिनिधि पीड़ा कहते हैं, यानी सरोगेट सफरिंग।
हाँ, ये बहुत ही जटिल किस्म का दुख है,
है ना? ये वो दुख है जब कोई इंसान किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहा होता है जो जीवन के अंतिम चरण में है। वो खुद बीमार नहीं है पर वो उस दर्द को हर दिन जीता है।
वो उस पीड़ा का बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है।
बिल्कुल। और फिर एक और कैटेगरी आती है, प्रणालीगत पीड़ा यानी सिस्टेमिक सफरिंग,
जिसमें भूखमरी, युद्ध या मानव तस्करी जैसी चीजें आती हैं।
सही कहा। इन सबको देखकर ऐसा लगता है जैसे पीड़ा हमारी टूटी हुई दुनिया का कोई अपवाद नहीं है बल्कि एक बहुत ही भयानक नियम बन चुका है।
नियम बन चुका है, बिल्कुल।
तो मेरा सवाल ये है, जिसे हम हमेशा पूछते हैं, कि सबका आखिर मतलब क्या है? जब हमारे चारों ओर इतनी अलग अलग तरह की पीड़ा है, तो क्या ये नेचुरली इंसान के मन में नहीं आएगा कि वो एक न्याय और करुणा वाले ईश्वर से पूछे कि उसने ऐसी दुनिया बनाई ही क्यों?
ये पूछना बहुत ही मानवीय है। असल में यही वो बिंदु है जहां से ज्यादातर संशयवादी या स्केप्टिक्स अपनी बात शुरू करते हैं।
उनका तर्क सुनने में काफी लॉजिकल भी लगता है।
लगता है, क्योंकि उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि अगर दुनिया में इतनी भयानक और बिना किसी कारण की पीड़ा मौजूद है, तो एक प्रेम करने वाला ईश्वर इसे बर्दाश्त कैसे कर सकता है?
और इससे वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं?
वो दो ही निष्कर्ष निकालते हैं, या तो ईश्वर अक्षम है, यानी वो इस दुख को रोक नहीं सकता, या फिर वो ऐसा ईश्वर है जो हमारी पूजा के योग्य ही नहीं है,
क्योंकि वो इतना क्रूर है कि उसे हमारी परवाह नहीं है।
सही। वॉल्टन ये स्वीकार करते हैं कि ये ऐसे सवाल हैं जो किसी भी संवेदनशील इंसान के मन में उठेंगे ही।
तो फिर वॉल्टन इस दुविधा का समाधान कैसे करते हैं? क्योंकि अगर हम ईश्वर से सवाल न पूछें, तो क्या हम बस अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं?
यहीं पर हमें ये समझना होगा कि हमारा ये जो तार्किक या लॉजिकल अप्रोच है, वो फेल क्यों हो जाता है।
अच्छा, कैसे?
वॉल्टन समझाते हैं कि जब हम ईश्वर को विंडिकेट करने या सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक बहुत बड़ी गलत धारणा पर काम कर रहे होते हैं।
कौन सी धारणा?
हम ये मान रहे होते हैं कि इंसान की न्याय की समझ इतनी संपूर्ण है कि ईश्वर को भी उसी समझ के दायरे में काम करना चाहिए।
आई सी।
अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो क्या ब्रह्मांड का निर्माता हमारे बनाए किसी कानूनी मापदंड से बंधा हो सकता है?
बिल्कुल नहीं। यानी हमारा काम ये तय करना नहीं है कि ईश्वर फेल हुआ या पास।
सही पकड़ा आपने। जोब की पुस्तक का उद्देश्य हमें ये बताना नहीं है कि बीमारियां क्यों हैं। इसका उद्देश्य ये सिखाना है कि ऐसी दुनिया में हम ईश्वर पर भरोसा कैसे बनाए रखें।
क्योंकि हिसाब मानने की जिद अक्सर इंसान को कड़वाहट की तरफ ले जाती है।
बिल्कुल। जबकि समझ और विश्वास हमें उस पीड़ा से गुजरने की शक्ति देते हैं।
तो इसका मतलब है कि हमें अपने सवालों की दिशा ही बदलनी होगी। चूंकि हम ईश्वर पर मुकदमा नहीं चला सकते, इसलिए हमें इस दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदलना पड़ेगा।
हाँ, और वॉल्टन इसी बदलाव के लिए हमें 5 अलग अलग दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव्स देते हैं।
तो चलिए पहले दृष्टिकोण पर आते हैं।
पहला दृष्टिकोण बहुत ही सीधा है। वॉल्टन कहते हैं कि पीड़ा पूरी मानवता के लिए सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल है।
यूनिवर्सल मतलब ये किसी एक को चुनकर नहीं आती।
नहीं, ये कोई ऐसी लॉटरी नहीं है जिसमें किसी एक का नाम निकल आया और उसे दुख मिल गया। ये हम सब का सामूहिक अनुभव है।
लेकिन एक मिनट, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये विचार थोड़ा निराशाजनक लगता है।
निराशाजनक
क्यों? क्योंकि ये जानना कि दुख सबको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें शांति कहाँ है? इसमें तो ऑर्डर लगता है।
सतह पर देखने पर ये निराशाजनक लग सकता है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तो इसमें एक बहुत बड़ी सांत्वना छिपी है।
वो कैसे?
सांत्वना है अकेले ना होने का एहसास। जब किसी पर कोई बड़ा दुख टूटता है, तो सबसे पहला सवाल क्या होता है?
यही कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ।
बिल्कुल। इंसान खुद को ब्रह्मांड में अकेला महसूस करता है, जैसे ईश्वर ने उसे अलग से दंडित करने के लिए चुना हो। यूनिवर्सल होने का यह दृष्टिकोण हमें इस अलगाव से बचाता है। वो हमें याद दिलाता है कि पीड़ा महसूस करना मानव होने की एक शर्त है।
सही बात है। हम सब एक ही नाम में सवार हैं, और यहीं से वॉल्टन हमें दूसरे और अधिक गहरे दृष्टिकोण की ओर ले जाते हैं,
जो कि है विकासशील सृष्टि का विचार। राइट? हाँ, क्रिएशन इन प्रोसेस। वॉल्टन कहते हैं कि यह सार्वभौमिक पीड़ा दरअसल इस विकासशील सृष्टि की अनिश्चितता यानी कंटिंजेंसी का हिस्सा है।
विकासशील सृष्टि, यह शब्द काफी दिलचस्प है। इसका मतलब है कि दुनिया अभी कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है जिसे बनाकर शोरूम में सजा दिया गया हो।
बिल्कुल सही समझा आपने। हम अभी तक एक पूरी तरह से व्यवस्थित दुनिया में नहीं रह रहे हैं। ये सृष्टि अभी प्रोसेस में है,
और चूंकि ये अभी अपने अंतिम रूप में नहीं है, इसलिए इसमें अनिश्चितता का होना बहुत स्वाभाविक है।
हाँ, और यही अधूरापन हमारे जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं का कारण बनता है।
चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि स्रोत में इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और भावनाओं का।
हाँ, वो एनालॉजी सच में बहुत पावरफुल है।
देखिए, हम अक्सर दर्द को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन शारीरिक दर्द दरअसल एक चेतावनी प्रणाली है। अगर किसी का हाथ उबलते पानी पर पड़ जाए और उसे दर्द ही ना हो, तो क्या होगा?
उसका हाथ पूरी तरह से जल जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा।
एग्जैक्टली। दर्द हमें पीछे हटने के लिए कहता है। दर्द के बिना तो हम हर पल भयानक खतरे में रहेंगे। और यही नियम हमारी भावनाओं पर भी लागू होता है।
वो कैसे?
अगर हम इंसान प्यार करने में सक्षम हैं, खुशियां महसूस कर सकते हैं, तो ये भी तय है कि हम भावनात्मक रूप से आहत भी होंगे।
क्योंकि जब कोई अपना दूर जाएगा तो दर्द तो होगा।
बिल्कुल, हम आहत होने से तभी बच सकते हैं अगर हम पत्थर बन जाए। तो जो चीजें हमें इंसान बनाती हैं, वही चीजें हमें पीड़ा के प्रति संवेदनशील भी बनाती हैं।
ये बहुत ही सुंदर व्याख्या की आपने। और अगर हम बायोलॉजी और साइकोलॉजी की सच्चाई को ध्यान में रखें तो हमें सामान्य या नॉर्मल जीवन की अपनी परिभाषा को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा।
यानी दर्द रहित जीवन नॉर्मल नहीं है?
बिल्कुल नहीं। वॉल्टन हमें चुनौती देते हैं कि एक दर्द रहित जीवन इस वर्तमान दुनिया में नॉर्मल नहीं हो सकता। वो एक अपवाद है, नियम नहीं।
तो अगर हम पीड़ा की उम्मीद पहले से रखते हैं कि ये तो आएगी ही,
तो जब ये आती है तो हमें ये कोई अजीब या हमारे खिलाफ रची गई साजिश नहीं लगती।
ये भले ही दर्द को कम ना करे, लेकिन इसके प्रति हमारे रवैये को जरूर बदल देता है। हम सदमे में नहीं जाते कि अरे ये क्या हो गया।
सही कहा। ये हमारी उस ऊर्जा को बचाता है जो हम ये सोचने में बर्बाद कर देते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है।
अब यहाँ से हम तीसरे दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि ये सीधे हमारी आम गलत फहमियों पर वार करता है।
आप पाप और पीड़ा के बीच के भ्रम की बात कर रही हैं ना?
हाँ, तीसरा दृष्टिकोण यही है कि पीड़ा आंतरिक रूप से पाप से नहीं जुड़ी है।
ये सच में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये सीधे तौर पर कर्मा या कर्मफल के विचार को चुनौती देता है।
इंसान स्वाभाविक रूप से यही मानना चाहता है कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसने जरूर पास में कुछ बुरा किया होगा।
हाँ, और लोग गलतियों 6-7 का हवाला भी देते हैं कि जो हम बोते हैं वही काटते हैं।
तो फिर वॉल्टन इस पर क्या कहते हैं?
वॉल्टन बहुत स्पष्ट कहते हैं कि हमारे व्यवहार और हमारी परिस्थितियों के बीच कोई सीधा 1-to-1 मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है।
ऐसा नहीं है कि आपने एक झूठ बोला और अगले दिन आपकी हड्डी टूट गई।
बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
वो क्यों?
क्योंकि मानव स्वभाव हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कुछ बुरा होता है तो हम तुरंत खुद को दोष देने लगते हैं और सोचते हैं कि मैंने क्या गलत किया।
सही बात है। ये डिफॉल्ट रिस्पॉन्स क्यों है हमारा?
इसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि इंसान अनिश्चितता से नफरत करता है।
हम कंट्रोल चाहते हैं।
कंट्रोल?
हाँ।
अगर हम ये मान लें कि पीड़ा हमारे पाप का नतीजा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कि अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो मेरे साथ सिर्फ अच्छा होगा।
ये सोच हमें एक झूठा कंट्रोल का एहसास देती है।
एग्जैक्टली। जबकि सच ये है कि दुख बिना किसी व्यक्तिगत कारण के भी आ सकता है। वॉल्टन कहते हैं कि हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो ये जान सकें कि क्या ईश्वर की सजा है और क्या सिर्फ इस दुनिया का अधूरापन।
और हम ब्रह्मांड की हर घटना को ईश्वर का माइक्रो मैनेजमेंट भी तो नहीं मान सकते ना?
बिल्कुल। और ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि हम अनुमति देना यानी अलाउ करने जैसे शब्दों का उपयोग कैसे करते हैं।
हाँ, हम अक्सर कहते हैं कि ईश्वर ने इस बीमारी की अनुमति दी,
जो कि हमारी भाषा की सीमा है। ऐसे शब्द अक्सर ईश्वर पर दोष मढ़ने का सुझाव देते हैं, जो कि अपर्याप्त है।
यहीं पर मुझे स्रोत में दिया गया जॉन पोल्किंगहोर्न का विचार बहुत सटीक लगता है। वो कहते हैं कि दुनिया में पीड़ा ईश्वर की कमजोरी के कारण नहीं है, बल्कि ये उस सृष्टि की अपरिहार्य कीमत यानी इनएस्केपेबल कॉस्ट है जिसे ईश्वर से अलग होने की अनुमति दी गई है।
ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। इसका अर्थ है कि एक ऐसा ब्रह्मांड जहां इंसानों को चुनने की आजादी है, उसकी कीमत यही होगी कि वहां अनिश्चितता और पीड़ा होगी।
क्योंकि सच्चा प्यार और आजादी कभी जबरदस्ती नहीं हो सकते, तो इस स्थिति में सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम ईश्वर की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करें।
सही कहा। अब जब हमने ये समझ लिया है कि पीड़ा क्या नहीं है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम इसका सामना किस सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं।
और यहीं आते हैं वॉल्टन के चौथे और पांचवें दृष्टिकोण।
हाँ, चौथा दृष्टिकोण ये है कि पीड़ा हमारे विश्वास को गहरा करने का एक अवसर है। रोमियो 5:3 का संदर्भ देते हुए वो समझाते हैं कि जीवन की हर पीड़ा ने हमें वो बनाया है जो हम आज हैं।
लेकिन हम लोग अक्सर प्रार्थना में क्या करते हैं? हम ईश्वर से कहते हैं कि दुख तुरंत हटा दो।
जबकि बाइबल ये वादा नहीं करती कि ईश्वर सबको हमेशा स्वस्थ और खुश रखेगा।
पता, इसको मैं एक रूपक यानी एनालॉजी के जरिए समझाना चाहती हूँ।
बिल्कुल बताइए।
हम अक्सर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो तूफानी पानी यानी ट्रबल्ड वाटर्स से हमें बचा ले, या उस पर कोई पुल बना दे ताकि हम बिना भीगे उस पर चले जाएं।
हाँ, हमारी उम्मीद यही होती है।
लेकिन ईश्वर का वादा हमें उस तूफानी पानी के बीच से यानी थ्रू इट सुरक्षित ले जाने का होता है। वो पुल नहीं बनाता, वो हमारा हाथ पकड़कर पानी में उतरता है।
ये एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है।
लेकिन अगर हमारी उम्मीदें पुल की थीं और वो पूरी नहीं हुई तो कमी ईश्वर में नहीं है। हमें अपनी उम्मीदों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।
सही कहा। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं तब भी ईश्वर पर भरोसा करना ही असली चुनौती है।
और यही हमें पांचवें दृष्टिकोण की ओर ले जाता है, मसीह की पीड़ा में भागीदार बनना। फिलिप्पियों 3:10 का हवाला देते हुए ये सिखाता है कि हार के माध्यम से भी जीत मिल सकती है, जैसे कि क्रूस यानी क्रॉस के मामले में हुआ। दुनिया जिसे हार मान रही थी वो सबसे बड़ी जीत बनी।
बिल्कुल। इसलिए हमें हमेशा दुश्मनों से छुटकारे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस पीड़ा में एक बड़े उद्देश्य को देखना चाहिए।
तो अगर हम इन पांचों दृष्टिकोणों का सारांश निकालें तो मुख्य निष्कर्ष यही है कि हमें कभी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमारे जीवन से पीड़ा पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
हाँ, ये हमारी दुनिया और मानवीय स्थिति का हिस्सा है।
और हमारा काम ईश्वर को दोष देना नहीं है, बल्कि यह खोजना है कि इस पीड़ा के माध्यम से हमारे जीवन में कौन से उद्देश्य पूरे हो सकते हैं।
सही बात है, ये हमारे नजरिए को सच में बदल देता है।
चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक नया और गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ, जो इन्हीं स्रोतों से उपजा है।
बिल्कुल, क्या है वो सवाल?
अगर पीड़ा एक विकासशील सृष्टि की कीमत है और दर्द महसूस करने की क्षमता ही हमें इंसान बनाती है ताकि हम प्यार और भावनाएं महसूस कर सकें, तो जरा सोचिए, क्या इस वर्तमान दुनिया में एक पूरी तरह से दर्द रहित अस्तित्व का मतलब ये नहीं होगा कि हम अपनी मानवीयता और गहराई से जुड़ने की क्षमता ही खो चुके हैं?
वाओ, ये सच में बहुत गहरा विचार है। बिना दर्द के खतरे के क्या हम कभी किसी से सच्चा प्यार कर पाएंगे?
यही वो सवाल है जो इस गहरी चर्चा के समाप्त होने के बाद भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में इतना ही।